भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहूँगा, पुनः आप लोगों का सान्निध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुल मेरे ख्याल से एक महीने के पश्चात, तो हर वर्ष की तरह यही साक्षात्कार रहा मेरा पाश्चात्य देश में प्रचार करने के पश्चात। मेरा भारत महान। और इस महान भारत में हमारे लिए सबसे महान है श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, कि उनके जैसे कोई नहीं। तो हर वर्ष की तरह मैं यही रिपोर्टिंग आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो मंदिर का माहौल है, भगवान के इतने सुंदर अर्च विग्रह, उनकी सेवा, कथा कीर्तन, इसके अलावा और कुछ नहीं संसार में। पूरे देश विदेश भ्रमण करने के पश्चात आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहां से रिपोर्ट दे रहा हूं आपको। और वहां के इस्कॉन के भी भक्त, वो लोग जब केवल यहाँ के वीडियो फोटो लेक्चर्स वगैरह सब देख सुनकर वो लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि नासिक में इतने सुंदर अर्च विग्रह भी हैं, मंदिर भी हैं, इतने कार्यक्रम चल रहे हैं। और एक भक्त ने तो कहा कि आई हैव स्टार्टेड एनवीइंग नासिक डिवोटीज पॉजिटिवली। तो हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की और श्री श्री मदन गोपाल जी की ऐसी असीम कृपा हमारे ऊपर है। तो हमारा गीतामृत का कार्यक्रम मेरे ख्याल से हर बुधवार को कार्यक्रम चल रहा था। हम तीसरे अध्याय पर और आज का जो श्लोक है उसे लेने से पहले जो तीन श्लोक हम ले चुके हैं उसकी रूपरेखा देख लें। पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया, यदि बुद्धि योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर हे भगवान मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न, मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, आप निश्चित रूप से बताइए। और फिर मेरे जाने से पहले जो श्लोक हमने लिया था, भगवान अर्जुन के पहले प्रश्न से अब उत्तर देना प्रारंभ किए तीसरे श्लोक से। तो तीसरा श्लोक हम बहुतों को याद नहीं होगा शायद, तो फिर से हम तीसरा श्लोक गाकर दोहराकर उसका अर्थ देखकर फिर हम आज के श्लोक पर जाएंगे। आज का श्लोक चौथा है बाय द वे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अनुवाद इसका इस प्रकार से है, श्री भगवान ने कहा है, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ लोग इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो इस श्लोक में भगवान अब जो उत्तर प्रारंभ किए जिसमें भगवान अर्जुन के सामने हालांकि भक्ति योग की महिमा प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ जो कोई ऐसे हैं जो अब भक्ति योग के लिए योग्य नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि जो सांख्य योग या ज्ञान योग के प्रति आकर्षित रहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनके लिए भी ये भगवद गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तो चाहे कोई अष्टांग योगी हो, ज्ञान योगी हो, बुद्धि योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, सभी ग्रंथों के सरताज हैं भगवद गीता। तो ये तीसरे अध्याय के इस श्लोक से भगवान संकेत के रूप में अर्जुन के द्वारा हम सबको समझा रहे हैं। तो अब इसके पश्चात आज का श्लोक, जिसमें भगवान और आगे जो अर्जुन की मनोधारणा चल रही है उसे ध्यान में रखते हुए, अब आज का श्लोक भगवान अर्जुन को एक अर्जुन का मनोभाव देखते हुए कह रहे हैं। तो बहुत सूक्ष्म है आज का श्लोक, सटल। तो मेरे पीछे दोहराइए, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्म। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान ये देख रहे हैं अर्जुन के अंदर कि अर्जुन के मन में अब ये दुविधा है कि मैं सन्यास लूं या ये युद्ध न करूं। अब देखिए दोनों में अंतर है। सन्यास लेने का अर्थ है कि मैं किसी भी प्रकार का युद्ध न लड़ूं अब, और न कर्मणाम अनारंभान, ये जो पहली लाइन है इसका अर्थ ये है कि अर्जुन सोच रहे थे कि मैं ये युद्ध न लड़ूं, खाली इस युद्ध से सन्यास ले लूं। और दूसरा विचार अर्जुन का ये चल रहा था कि मैं हमेशा के लिए रिटायर हो जाऊं। एक है कि खाली इस युद्ध से रिटायर हो जाऊं या हमेशा के लिए रिटायर हो जाऊं लड़ने से। तो भगवान अर्जुन के ये दोनों विचारों को भांप रहे हैं और परख कर आज का श्लोक बताए हैं। क्योंकि हमारे मन में भी कई बार हम जब परेशान हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति से या स्थिति से, तो कई बार हमारे अंदर भी विचार क्या आता है, भाड़ में जाए सब कुछ, पूरा संसार भाड़ में जाए। कई लोगों तो आत्महत्या कर लेते हैं, पूरा ही खत्म कर देते हैं अपने आप। तो ये जो द्वंद्व हमारे मन में भी चलता है, जो अर्जुन के मन में चल रहा है, तो भगवान अब उसे देखते हुए ये आज का श्लोक कहे हैं। अब हमें आज के श्लोक का संबंध इस अध्याय के प्रथम श्लोक से लेना है, समझना है। कैसे आप समझेंगे आज के श्लोक का संबंध? अभी अभी हमने 3.1 संक्षिप्त रूप में सुना क्या था, अर्जुन का पहला प्रश्न इस अध्याय में क्या था, प्रश्न क्या था? कुछ याद आ रहा है? अर्जुन उवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। ये है 3.1, जिसमें अर्जुन भगवान से ये प्रश्न पूछे कि हे जनार्दन, हे भगवान, यदि आपके अनुसार, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने जो ज्ञान दिया तो अभी अभी अर्जुन उसे सुने हैं दूसरा अध्याय। तो दूसरा अध्याय सुनने के पश्चात अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, यदि आपके अनुसार बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? कौन सा घोर कर्म? ये मारकाट, खून खराबा, युद्ध, क्यों इसमें लगा रहे हो? यदि आपके अनुसार बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है कि बस ज्ञान से समझ लेना, साक्षात्कार कर लेना, तो यदि बुद्धि से, ज्ञान से, सांख्य से साक्षात्कार मिल जाएगा तो फिर ये घोर कर्म में क्यों आप लगा रहे? तो ये अर्जुन का प्रश्न था। तो अब मेरा प्रश्न आप लोगों से कि भगवान ने आज का जो श्लोक कहा है तो उसका संबंध इससे कैसे है? आज का श्लोक उसका अनुवाद समझ में आया आपको? न कर्मणाम अनारंभान। भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम यदि ये समझ रहे हो कि बिना कर्म किए तुम घोर पाप से बच जाओगे तो ये तुम्हारा भ्रम है। इफ अर्जुन यू आर थिंकिंग दैट विदाउट परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ कर्मा आई विल बी रिलीव्ड फ्रॉम कार्मिक रिएक्शंस, यू आर इन बिग इल्यूजन। यहां पे अर्जुन घोर कर्म के विषय में कह रहे हैं ना, तो भाई मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस निष्क्रिय हो जाऊंगा, आई विल बिकम टोटली विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें भी घोर कर्म लगेगा तुमको। अभी देखो बहुत डेंजरस स्टेटमेंट भगवान बोल रहे हैं कि यदि तुम इनएक्टिव हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, उसमें भी तुम्हें को घोर कर्म लगने वाला। तुम ये समझ रहे हो कि ये युद्ध लड़ने में घोर कर्म है। न कर्मणाम अनारंभान, कि यदि तुमने कर्म का आरंभ ही नहीं किया। अर्जुन का मन में क्या विचार था, क्या प्रश्न अर्जुन का, कि चलो मैं कर्म का आरंभ ही नहीं करूंगा। ये उस प्रकार से है, मान लो कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से द्वेष करता है, झगड़ा हुआ है, तो उसके मन में विचार है कि मैं इसको मार डालूं, लेकिन फिर वो नहीं, पुलिस आएगी मेरे पीछे, फांसी चढ़ जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं करता। तो पुलिस आ गई, पुलिस ने बोला तुमको हम अंडर अरेस्ट। अरे मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, घोर कर्म लग गया तुमको। मैंने कुछ किया ही नहीं, लग गया घोर कर्म। तो कितना ये भयावह होगा कलयुग में अगर ये सब काउंट होता है। पूरा नासिक सेंट्रल जेल बन जाएगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं न कर्मणाम अनारंभान, कि यदि अर्जुन तुम सोच रहे हो कि मैं ये घोर कर्म को आरंभ ही नहीं करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, नहीं, ये तुम्हारी भ्रांत धारणा है। और इसके साथ साथ यदि अर्जुन तुम ये सोच रहे हो कि मैं सन्यास ले लूं तो भी नहीं, केवल सन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये भगवान के शब्द है। तो इसका पहले श्लोक से ये कनेक्शन आप समझ में आ रहा है? आप लोग भूल तो नहीं गए ना, भगवत गीता चल रही है, वही ऑडियंस है ना। श्लोक के अब दो महत्वपूर्ण विषय, तो ये दो मुद्दे भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं। कर्म का आरंभ ही न करना, ये अर्जुन का विचार है, और संन्यास ग्रहण कर लेना। ये जनरली हम देखें कलयुग में सन्यास की परिभाषा क्या दी जाती है, अरे सोशली डेड, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया इसने। सन्यास मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, तो निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया, संन्यास का ये अर्थ। तो ये दोनों को भगवान ले रहे हैं। तो अब भगवान ने जो इन दोनों के संदर्भ में शब्द इस्तेमाल किए हैं, कर्म का आरंभ ही न करना, इसको भगवान आज के श्लोक में कहते हैं नैष्कर्म्य, कर्म का आरंभ ही न करना। और संन्यास ग्रहण कर लेने के संदर्भ में भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सिद्धि। तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि हर एक जीव ये दो कार्यों में लगा हुआ है, अपने पिछले जो कर्म हैं पाप कर्म उनके बंधनों से मुक्त होने में लगा है, जिसका अर्थ है नैष्कर्म, कर्म बंधन से मुक्ति, और उसके साथ साथ सिद्धि। जैसे कि जब कोई मरीज वो उसका उपचार चल रहा है तो उसके मन में क्या धारणा होती है जब वो दवाई लेता है, कि ये जो बीमारी का बंधन है इस दवाई से इस छुटकारा मिले मुझे और मुझे स्वस्थ मेरा शरीर पुनः मिल जाए, उसे कहेंगे सिद्धि। तो बीमारी से छुटकारा नैष्कर्म्य और सिद्धि का अर्थ है स्वस्थ शरीर। तो अर्जुन के मन में ये दो विचार थे। अब देखिए, इसलिए ये जो श्लोक है काफी सूक्ष्म है, जिसके अंदर अर्जुन के सूक्ष्म विचारों को, प्रश्नों को भगवान जांच कर परख कर आज का श्लोक कहें। तो अब हम सबसे पहले नैष्कर्म्य, तो भगवान के अनुसार नैष्कर्म्य आज के श्लोक का अर्थ क्या भगवान ने दिया कि कर्म बंधन से मुक्ति का भ्रम। कर्म बंधन से केवल मुक्ति नहीं बल्कि मुक्ति का भ्रम। क्यों मुक्ति का भ्रम? क्योंकि अर्जुन ने नैष्कर्म की परिभाषा क्या दी है, रेफ्रेनिंग फ्रॉम एक्टिविटी, कि मैं यदि कर्म ही नहीं करूंगा तो फिर बंधन कैसे आएगा। तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या अर्जुन का ये लॉजिक सही था कि मैं यदि कर्म ही ना करूं, उसका आरंभ ही ना करूं, तो फिर मैं कर्म बंधन में कैसे फंसूंगा, क्या अर्जुन का लॉजिक ठीक है? यहां भगवान कह रहे हैं कि भ्रम है अर्जुन तुम्हारा, कि तुम इस प्रकार के नैष्कर्म से कर्म बंधन से छुटकारा पाने की लालसा में हो, ये तुम्हारा भ्रम है, नहीं होगा, घोर कर्म में फिर भी लगोगे तुम, मतलब रिएक्शन बोल रहे हैं भगवान, उसका रिएक्शन फिर भी होगा तुम। तो यदि हम और आगे नैष्कर्म को समझें तो नैष्कर्म को शिला प्रभुपाद अपने पोरपोर्ट में कैसे समझा रहे हैं, जिम्मेदारियों से भागना। अब यहां पर हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जिम्मेदारियों से जब भागता है कोई तब उसके ऊपर उसका रिएक्शन जरूर लगेगा, मतलब उसे कोई जिम्मेदारी दी गई है नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई उदाहरण, कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं अब नैष्कर्म के इस अर्थ का। पुलिस वर्दी में खड़ा हुआ है और चोर उचक के लूट के ले जा रहे हैं किसी को और वो खड़े होके देख रहे हैं, सब लोग खड़े होके देख रहे, पुलिस भी खड़े होके देख रहे, तो सबसे ज्यादा दोषी कौन है, अब किसको ज्यादा डांट मिलेगी, क्यों? वो बोलेगा भाई मैं भी तो भारत का एक नागरिक हूं, सब लोग खड़े होके देख रहे थे, मैं भी खड़े होके देख रहा था, और वो कहे FIR थोड़ी दर्ज कराई उसने अभी तक, बाबा आने दो FIR दर्ज कराने दो। आजकल शायद ऐसा भी होता है, जब तक FIR नहीं कराओगे कुछ नहीं होगा। तो यहां उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो अपराध कर रहा। अभी समझ में आ रहा है आपको, नैष्कर्म्य कैसे भगवान के अनुसार नैष्कर्म्य घोर कर्म में परिणित हो सकता है। तो जिम्मेदारी से भागना, इसे भगवान बोल रहे हैं नैष्कर्म्य। तो यदि हम जिम्मेदारी का इंग्लिश ट्रांसलेशन लें, क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को विच्छेदित करें तो क्या हुआ? रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अब सारे जितने भी जीव हैं, योनियां हैं, हम सब के अंदर ये एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, है कि नहीं? यदि आप किसी जानवर को लो, क्या उनके अंदर एबिलिटी नहीं है रिस्पॉन्ड करने की? हाँ, एक ये हर समय प्रश्न रहेगा कि एक कुत्ते को कौन सिखाता है कि यू यू करते हैं तो आना चाहिए। क्या क्या करते हैं? यू यू करते हैं ना कुत्ते को, हट करते हैं तो भागना है उसको, दूर हटना है। हाँ, कौन सी स्कूल में जाके वो सीखता है ये सब? हाँ, कौन सी बालवाड़ी में जाता है? सो हाउ डज अ डॉग रिस्पॉन्ड, हाउ डज ही हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड? और कितने ऐसे अलग अलग प्रकार के जीव हैं, योनियां हैं, जिनके अंदर ऐसी एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की। तो हमारे अंदर, अब मनुष्यों के अंदर तो है बहुत प्रचुर मात्रा में एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। तो फिर यदि हम भगवद गीता का जो हमारा वो 6 सेशन कोर्स होता है, फर्स्ट सेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स इन रिगार्ड्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इस वर्ड को हम लें तो क्या हम में और जानवरों में क्या अंतर है? वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, हम भी रिस्पॉन्ड करते हैं, हम अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं उदाहरण फिर से दूं, तो कोई गली का कुत्ता है, आप उसको यू यू करके ब्रेड का टुकड़ा दिखाओ, भाग के आएगा। और हम लोग को यू यू कौन करता है? ये सारे टीवी में एडवर्टाइजमेंट है, वही वो लोग क्या कर रहे हैं? तो वो लोग जब दिखाते हैं कि डोमिनोज का पिज्जा, वो कर क्या रहे हैं? यू यू यू। खाली अंतर यही है कि कुत्ते को हम एकदम अनसोफिस्टिकेटेड तरीके से यू यू करते हैं, और ये लोग एकदम अच्छा एक एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, बिलबोर्ड लगाएंगे, उसमें एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से यू यू कर रहे हैं। तो है वही कुत्ता, जैसे ही वो ब्रेड के टुकड़े को देख के यू यू सुन के वो अपनी दुम हिलाना शुरू करता है, वैसे हम लोग भी क्या करते हैं? अरे अरे, ये एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो तुरंत हम भी, कहां पर मिलेगा, चलो चलो फोन लगा, उठाओ, इस मॉल में जाओ, वहां पर जाओ, खरीदो इसको, लो। तो हम भी वही रिस्पॉन्ड किसको कर रहे हैं? हमारे अंदर वो जो एबिलिटी है उसको, उस प्रकार से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट सेशन है भगवद गीता कोर्स का हमारा, जिसके अंदर हम ये अंतर पूछते हैं कि मनुष्यों में और जानवरों में ये रिस्पॉन्सिव एबिलिटी में डिफरेंस क्या है, अब आप क्या कहोगे? क्या इतना ही डिफरेंस है कि कुत्ता वो खाली एक फेंकी हुई ब्रेड खाता है, हम उसको पका के उसके ऊपर सब डाल डूल के खाते हैं। नहीं, हमारी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड किस हद तक जा सकती है ये तो खाली बहुत स्थूल स्तर हो गया। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, इसमें हम लोग रिस्पॉन्ड जो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर फिट है कि हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अध्यात्म के संदर्भ में, सेल्फ रियलाइजेशन के संदर्भ में हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इसलिए अब यदि हम नैष्कर्म्य इस वर्ड को लें, जिम्मेदारी की वर्ड को लें, तो शास्त्र हमें क्या पूछ रहे हैं, अब आपको ये जिम्मेदारी दी गई है इस मनुष्य जीवन में, यू हैव बीन गिवन द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सेल्फ रियलाइजेशन, आर यू डूइंग दैट और नॉट? इफ यू आर नॉट डूइंग, यू विल बी लायबल फॉर रिएक्शन। तो अभी तक हमको लग रहा होगा, अरे मैं अगर ये आत्म साक्षात्कार के विषय में कुछ आरंभ नहीं कर रहा तो क्या मेरे ऊपर उसका भी कर्म लग रहा है? मैं वो भी नहीं कर रहा लेकिन ये भी नहीं कर रहा, लेकिन जिम्मेदारी आपको दी गई है। जैसे कि किसी को कोई पोस्ट दी जाती है, हमने पुलिस का एग्जाम्पल लिया था, उसको वो वर्दी दी गई है, तो इस जीव को हमको ये वर्दी क्या है, ये शरीर। जैसे पुलिस को वर्दी दी है तो उसको जिम्मेदारी उसके साथ आ जाती है, वैसे ही इस आत्मा के ऊपर ये जो शरीर, मनुष्य शरीर की वर्दी है तो जिम्मेदारी आ गई। कौन सी जिम्मेदारी? आत्म साक्षात्कार की। और यदि वो हम नहीं सिद्ध कर रहे तो नैष्कर्म, हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम समझ गए, अब इररिस्पॉन्सिबिलिटी या गैर जिम्मेदार, तो दो प्रकार से समझ पाएंगे, नो रिस्पॉन्स और इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स। जैसे हमने पुलिस का एग्जाम्पल दिया कि नो रिस्पॉन्स, और चोर का एग्जाम्पल क्या है? इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो अब कुछ शास्त्रों से हम इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स तो हम जानते हैं, नो रिस्पॉन्स का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे उन्हें उनका बंधन मिला। सबसे पहले अर्जुन का ही एग्जाम्पल है भगवद गीता में, कि अर्जुन ये बोल रहे थे, उनका प्रपोजल ये था नो रिस्पॉन्स, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन यदि तुम रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो सब लोग तुम्हारे पदचिन्हों पर चलेंगे और सभी जिम्मेदारियों से भागेंगे और सभी धर्म को नहीं स्थापित करेंगे और केवल अपने बारे में सोचेंगे। तो अर्जुन का उदाहरण। दूसरा उदाहरण, महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की चेष्टा दुशासन कर रहा था, तो हालांकि पाप कौन कर रहा था? शारीरिक रूप से दुशासन कर रहा था, दुशासन चीर हरण कर रहा था, शारीरिक रूप से दुशासन पाप कर रहा था, लेकिन वहां पर पूरी सभा को असत सभा कहा गया। क्यों? क्योंकि बाकी लोग नो रिस्पॉन्स, उन्होंने चीर हरण नहीं किया, उन्होंने ऑर्डर भी नहीं दिया, लेकिन क्योंकि वो वहां पर चुप्पी साध कर बैठे, कुछ नहीं किया उन्होंने, तो उसके वजह से भी उनके ऊपर कर्म लगा। सो नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कैन टर्न टू बी सिनफुल इन सर्कमस्टेंसेस लाइक दैट। फिर राजा उत्तानपाद, ध्रुव महाराज की कथा है कि ध्रुव महाराज, उनके पिता राजा उत्तानपाद के गोद में बैठने की चेष्टा की और उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने वहां से तिरस्कृत कर निकाल दिया, तो उत्तानपाद उनको भी उसका दंड मिला क्योंकि उत्तानपाद, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो खाली चुप रहे साइलेंट मोड में। हालांकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने उस सुरुचि को समझाए और जो भी सही था वो की करें, वहां पे बोले, लेकिन क्योंकि, इसलिए ध्रुव महाराज का क्रोध और बढ़ गया कि उनके पिता राजा उत्तानपाद कुछ कहे नहीं। होता ना कई बार झगड़ा होता है परिवार में, तो जो कोई वरिष्ठ होते हैं उनको पूछता, अरे आप बोलते क्यों नहीं, आप क्या ना मूर्ति की तरह खड़े हो गए। तो कई बार जो वो बोले, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो क्या करे, तो चुप रहता है। ये नहीं कि उसको लगता है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है तो बीच में खड़ा रहूंगा, हैं बीच में खड़ा रहेगा तो हार्ट अटैक आएगा। तो कोई भी स्थिति इस भौतिक संसार में सेफ नहीं है। तो ये राजा उत्तानपाद एकदम शांत रहे, लेकिन उनको भी उसका कर्म लगा। शमिक ऋषि परीक्षित महाराज को प्यास लगी, उनकी कुटिया में गए। शमिक ऋषि ने ऐसा नहीं कि मना किया कि मैं पानी नहीं दूंगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका। और कोई रिस्पॉन्स नहीं के वजह से फिर उनको भी वो परिणाम भुगतना पड़ा। परिणाम क्या हुआ कि उनके बेटे ने परीक्षित महाराज को शाप दिया, जिसके वजह से पूरा ब्राह्मण कुल का पतन हुआ। ये परिणाम। फिर राजा इंद्रद्युम्न जो आगे चलकर गजेंद्र बने, तो अगस्त्य मुनि वो गुजर रहे थे, राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र जो कि पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे, तो वो ध्यान अवस्था में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो शाप मिल गया और वो हाथी में परिणित हो। अब देखिए कुछ उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत शब्द कहा अगस्त्य मुनि को, नहीं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था, निग्लेक्ट इग्नोर, उसके अंदर भी उनको कर्म लग गया और ऐसा कर्म कि हाथी बन गए अगले जन्म में। तो ये सारे उदाहरण हैं नैष्कर्म्य, जो अर्जुन सोच रहे हैं कि देखिए इतने सारे उदाहरणों में नो रिस्पॉन्स में भी कर्म लग रहा है, तो सोचिए कि कितना सूक्ष्म है ये कर्म का चक्र इस भौतिक संसार में। अब जो दूसरा मुद्दा भगवान बता रहे हैं अर्जुन को वो है नच संन्यसनादेव सिद्धि। भगवान कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, यदि तुम इस विचार में हो कि मैं पूर्ण रूप से सन्यास ले लूं, तो भगवान कहते हैं न कि केवल सन्यास लेने मात्र से सिद्धि प्राप्त होगी। तो यदि अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं अब ये नहीं कि निष्कर्म में लेकिन सन्यास ले लेता हूं, ऑफिशियली मैं गेरुआ वस्त्र धारण कर सन्यास ले लेता हूं, तो फिर मैं बच जाऊंगा कर्म बंधन से। भगवान कहते हैं कि नहीं, उसमें भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि भगवत गीता में भगवान एक विशेष सन्यास की व्याख्या किए हैं, उसे कहते हैं कर्म सन्यास। अब ये जो कर्म सन्यास, ये जो टर्म है, ये बहुत मुश्किल है लोगों को समझना आजकल, क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि या तो आप कर्म में लगे हो या सन्यास ले लिया, ये दोनों कैसे हो सकता है, सन्यासी कर्म में लगा है ऐसे कैसे हो सकता है, और जो कर्म में लगा है वो सन्यासी बन सकता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोनों में क्या लग रहा है, विरोधाभास है कि नहीं, ये जो टर्म है कर्म सन्यास, इसमें विरोधाभास लग रहा है। लेकिन यही भगवद गीता का सिद्धांत है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को क्या बनाना चाहते हैं, हाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुमको मैं सन्यासी बनाना चाहता हूं, लेकिन कौन सा सन्यासी, कर्म सन्यासी। तो ये कर्म सन्यासी क्या है, देखिए हमारे आचार्य जैसे रूप गोस्वामी इत्यादि, उन्होंने इस कर्म सन्यास का अनुवाद या अपना एक टर्म दिया है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ है कि ऐसा वैराग्य जिसके अंदर जो कुछ है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना, न कि केवल उसका परित्याग करना, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। तो अब इंग्लिश में एक टर्म है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन का अर्थ होता है कि जब परस्पर विरोधी शब्द एक साथ कंबाइन होते हैं, जैसे कि युक्त वैराग्य कर्म संन्यास, तो ये इंग्लिश का एक टर्म है, ऑक्सीमोरॉन इसे कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स। हालांकि कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ दूसरा आता है बाहर। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा इस ऑक्सीमोरॉन का। सबसे पहले कर्म संन्यास, कि कर्म भी और संन्यास एक साथ, तो परस्पर विरोधाभास शब्दों का सम्मिलित होना। अ लिटिल क्राउड, अब क्राउड लिटिल कैसे हो सकता है? तो ये है विरोधाभास, ऑक्सीमोरॉन। अ फाइन मेस, जैसे हम अगर मैं अगर ये कहूं कि बहुत अच्छा कचरा है, अरे कचरा अच्छा है, हाँ कईयों के लिए अच्छा हो सकता है, कवों के लिए। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, एक्ट नेचुरली, आपको एक्टिंग भी करनी है और नेचुरल भी रहना है। एक्यूरेट एस्टिमेट, बिजनेस एथिक्स, डेलिबरेट मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया। अच्छा, ये कैसा लगा आपको? और फाइनली तो यहां पर भगवान जब ये बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें कर्म संन्यासी बनाना चाहता हूं, तो ये जो टर्म है ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है भगवद गीता का, जो आज तक किसी पंथ में, किसी स्पिरिचुअल पाथ में इस प्रकार का रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, कर्म संन्यास का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया गया। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद को देखें, जो कि एक सन्यासी, श्रील प्रभुपाद एक सन्यासी थे, तो श्रील प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से दिखाया कि एक कर्म सन्यासी क्या होता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद सन्यास लिए, क्यों? पाश्चात्य देश जाकर प्रचार करने के लिए। अब जनरली इंडिया में कोई सन्यास लेता है हिमालय की किसी गुफा में या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर एकांत में, बस अपना सन्यास जीवन बिताने के लिए। प्रभुपाद ने सन्यास लिया वेस्ट में जाके प्रचार करने के लिए, जो कि कुछ सन्यासी नियमों के बिल्कुल विरुद्ध था। कई ऐसे पंथ हैं भारत में जिनके सन्यासियों को खास ये नियम बताया जाता है कि समुद्र के पार नहीं जाना है आपको, और प्रभुपाद ने उसी वो कार्य करने के लिए सन्यास लिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कर्म सन्यासी थे। तो प्रभुपाद ने क्या क्या किया देखिए। एक सन्यासी हिप्पियों के बीच में बैठकर कीर्तन कर रहा है। अब जनरली भारत के सन्यासी वो केवल दूसरे सन्यासी या जो भी उनके शिष्य हैं या दूसरे विरक्त हैं, बस उनके साथ संग। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर, ये न्यूयॉर्क में जो वहाँ पर टॉमकिन स्क्वायर पार्क, वहाँ पर प्रभुपाद इन हिप्पियों के साथ बैठकर, और ऐसे ऐसे हिप्पी, कई तो ऐसी अवस्था में, नशे की अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में वहाँ पर आते और प्रभुपाद वहाँ पर कीर्तन में उनको लगाते। तो प्रभुपाद अगर देखा जाए तो सन्यास से हटकर कर्म सन्यासी का ये अभिनय निभा रहे थे। और भ्रमण करना, अब एक सन्यासी के लिए वैदिक पद्धति के अनुसार एक जगह पर स्थित रहना कहा गया है, लेकिन प्रभुपाद ने 13 वर्ष में पूरे विश्व का 14 से ज्यादा भ्रमण किया, पूरे विश्व का जो 13 वर्ष प्रभुपाद प्रीचिंग किए उसमें। तो भ्रमण करना और ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिलना जो कि सब प्रकार के पाप में लगे हुए, गोमांस खाने वाले, सब प्रकार के नियम तोड़ने वाले, ऐसे व्यक्तियों के साथ संग कर कर उनको बताना भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो ऐसा संग उनके साथ रहना, जब प्रभुपाद शुरुआत के दिनों में अमेरिका पहुंचे तो ऐसे घर में रह रहे थे जहां पर फ्रिज में प्रभुपाद जब प्रसाद बनाने के लिए कुछ सब्जियां निकालते या खिचड़ी बनाने के लिए कुछ सब्जियां निकालते तो उसके ऊपर वाले रैक पे मीट पड़ा था। तो ऐसे ऐसे जगहों पर जाकर प्रभुपाद ने अपना सन्यास धर्म भी पालन किया और भगवान का प्रचार भी करने लगे। और ऐसे बड़े बड़े मंदिर, अब सन्यासी ऐसे मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, मंदिर मैनेज कर, मंदिर को बनाना, सोचो कि कितना बड़ा वो मैनेजमेंट है, फंड रेजिंग, परमिशंस, कंस्ट्रक्शन, ये सब में प्रभुपाद खुद एक सन्यासी के रूप में लगे हुए रहते थे। अब जैसे प्रभुपाद ने जो इतने भव्य मंदिर बनाए, हालांकि प्रभुपाद कहते थे कि इतने भव्य मंदिर प्रभुपाद ने बनाए लेकिन किसके लिए, क्यों उनको सन्यासी कहा गया फिर भी, क्योंकि इतने भव्य मंदिर उन्होंने बनाए भगवान के लिए, खुद के लिए नहीं। हां, वो व्यक्ति सन्यास के पद से च्युत हो जाता यदि वो ऐसा सब कुछ भव्य खुद स्वयं के लिए बनाता। जैसे हाल ही में मेरी चर्चा हो रही थी कुछ लोगों के साथ, मैं जब वापसी में था फ्लाइट में, तब इनका अक्सर ये प्रश्न होता है कि आपके ये हरे कृष्णा के इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं आप लोग, क्या क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, कोई दिन दुखियारे को खिलाओ इससे अच्छा। हाँ, ये आपने टिपिकल आर्ग्यूमेंट सुना होगा कितने बड़े। एक परिवार वो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि स्वामी जी, इतने सारे मंदिर भारत में ऑलरेडी हैं, कोई उनको देखता नहीं, पूछता नहीं, बंद हो गए हैं, आप उनको क्यों नहीं लेते, नया नया मंदिर क्यों बना रहे हैं आप। तो प्रभुपाद ने देखा वो परिवार आया और छोटा बच्चा था उनका। प्रभुपाद ने पूछा, ये किसका बच्चा है? बोले, मेरा बच्चा है। प्रभुपाद ने कहा, इतने अनाथ घूम रहे हैं भारत में, इसको पैदा करने की जरूरत। तो इनका आर्ग्यूमेंट रहता है कि आप दूसरे मंदिर गोद लो बने बनाए, लेकिन बच्चा हम हमारा ही पैदा करेंगे। तो प्रभुपाद क्या करते थे, वो उनका लॉजिक यूज करते थे सबसे पहले। तो ये कुछ लोग मुझे पूछने लगे कि इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है आपकी। तो फिर मैंने कहा, ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए आप बताइए। बोला, अरे दीन दुखियारों को खिलाओ वो पैसों से, कितने सारे भूखे घूम रहे हैं। तो मैंने देखा कि उनका सेलफोन था, ये वाला आईफोन। तो मैंने कहा, ये आपका आईफोन कितने का है? 45,000 का। तो मैंने कहा, फोन पे बात करने के लिए आपको 45,000 खर्च करने की क्या जरूरत थी, आप एक 3,000 का मोबाइल भी ले सकते थे और बाकी 40,000 दूसरों को खिलाने में यूज कर सकते, आपने किया क्या? तो खुद के लिए ये लोग इतना खर्चा करेंगे कि ये मल मूत्र से भरा हुआ शरीर के ऊपर डायमंड की ज्वेलरी, वो भी एकदम वो स्वारोस्की। इनका एक प्रश्न था कि आपके ये डीटीज के लिए स्वारोस्की क्यों यूज करते हैं, आपको पता है अगर जो ज्वेल्स होते हैं तो। अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये एक प्रश्न हाल ही में था मुझको पूछा गया कि ये आपके मदन गोपाल जी के लिए गोल्ड की फ्लूट ऑफर क्यों करना जरूरी। मतलब खुद के लिए तो वो लोग सबसे ज्यादा ब्रांडेड आइटम्स खरीदेंगे लेकिन भगवान के लिए अगर कोई प्रेम से कुछ ऑफर, भगवान के लिए गोल्ड की फ्रूट है क्या? पूरा संसार उनका है, लेकिन ये इनके ऊपर इतना खर्चा, उनके ऊपर इतना खर्चा क्यों? तो मैंने उनको पूछा, अच्छा हाल ही में ये जो आईपीएल हुआ, एक एक खिलाड़ी ने एक सिक्स मारा, उसको 1,00,000 रुपया मिला। एक टीम कर किया क्या उन्होंने, बस गेंद यहां वहां से मारे, 10 करोड़ रुपया। यदि आपको जानकारी है विनिंग टीम को कितना मिला है, 10 करोड़। किसी ने प्रश्न पूछा? ये ऐसे जो लोग हैं, इन्होंने प्रश्न पूछा कि क्यों भाई 10 करोड़ कितने दिन दुखहरों को खिला सकते थे? क्या इनके घर में रोटी की कमी है जो खेल रहे थे? तो ये जब एक ना डंडा लेके बॉल मारेंगे, उनको वाह, उनको 20 करोड़ लोग देखेंगे और 10 करोड़ उनको इनाम दिया जाएगा, और हाँ इनको ही देना चाहिए। और यहां पर हम भगवान के लिए एक ज्वेलरी लगा दे, तो इनको क्यों ज्वेलरी दे रहे? मतलब वो इंग्लिश में एक सेइंग है, व्हेन आई फार्ट इट स्मेल्स लाइक लैवेंडर। हिंदी में नहीं बोलना चाहूंगा, व्हेन यू फार्ट इट्स ऑब्नॉक्शियस, वो ऐसा है कि अब देखिए, एक एक वो उनका ये प्रश्न था कि आप लोग ये ढोंग ढकोसला क्यों करते हैं, ये सब ये कपड़े पहनना, ऐसे तिलक लगाना, ये सब ढकोसला नहीं है क्या? ऐसा ये सब की क्या जरूरत है? तो वहां पर मैंने उनको पूछा कि सोसाइटी में लोग आजकल कितने प्रकार के ढोंग में लगे हुए हैं। जैसे कि लोग किसी पार्टी में जाएंगे तो पार्टी के अनुसार ड्रेस पहनेंगे, और वो भी मैचिंग होना चाहिए, सब कुछ मैचिंग होना चाहिए। वो परफ्यूम भी, एक मेंस का परफ्यूम अलग होता है, लेडीज का परफ्यूम अलग होता है। तो ये सब क्या है फिर? एक तो शरीर की बदबू छुपाने के लिए वो सब छिड़कते हैं, और उसमें भी ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, इसका ब्रांड अलग, उसका ब्रांड अलग, ये पार्टी में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसका सब कुछ। तो ये सब क्या ढोंग ढकोसला नहीं है? यही आईपीएल के फाइनल में कोई बड़ा सेलिब्रिटी बंदर की तरह कूद रहा है, उसकी सब फोटो खींचेंगे, मदारी का बंदर बेचारा कूद रहा है, उसको कोई देखेगा नहीं, आप लोग जान गए होंगे। कि वो जब बंदर की तरह कूदेगा, अरे वाह क्या कूद रहा है, और यहां पर जब भक्त कूदेंगे तो क्या ये ढकोसला? भक्त भगवान के लिए जब कूद के नाच के नृत्य कर रहे हैं तो बोलते हैं ये ढकोसला है। और एक जिन्होंने, उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, जिनको 10 करोड़ दिया जा रहा है, समाज के लिए क्या किया अगर पूछा जाए तो? समाज का क्या बेनिफिट हुआ है उसके अंदर मनोरंजन के अलावा? तो उसके लिए इतना सब कुछ। तो यहां पर प्रभुपाद ने जब ये खाली मंदिर नहीं खोले, प्रभुपाद के अनुसार ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय थे। तो जब कोई विश्वविद्यालय खोलता है तो वहां पर क्या बांटा जाता है? ज्ञान बांटा जाता है, वहां पर ज्ञान बांटा जाता है। तो इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद ने अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान की सेवा में, और भगवान से भी ज्यादा हम सब की, हम सब के उद्धार के लिए, हम सब के मोक्ष के लिए ये तैयारियां की। तो श्रील प्रभुपाद मंदिरों, एक सन्यासी होते हुए मंदिरों की, बड़े बड़े आलिशान मंदिरों की स्थापना की। फिर ट्रांसलेशन, रात रात भर जग कर प्रभुपाद ने बुक्स का ट्रांसलेशन किया, इतने सारे ग्रंथ उपलब्ध करा कर दिए जिनसे कितने बद्ध जीवों का कल्याण हो रहा है। और रथ यात्रा, ऐसे ऐसे शहरों में, यहाँ पर जैसे आप देखिए न्यूयॉर्क की रथ यात्रा चल रही, तो न्यूयॉर्क में जितने बड़े सारे शहर देशों के, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ये ऐसे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जो कि भारत के सन्यासी जब सुनते, यहां तक कि उनके गॉड ब्रदर जब सुनते तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। तो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करना, तो यदि हम देखें तो भगवत गीता का जो सिद्धांत है और श्रील प्रभुपाद ने जो अपने जीवन के द्वारा दिखाया हमें कि एक सन्यासी की सही परिभाषा क्या है, और वो भगवान अर्जुन को आज के श्लोक के द्वारा और ये पूरे अध्याय के द्वारा और अगले अध्याय के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें यदि सन्यासी बनना है तो तुम इस युद्ध में लड़कर, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति किससे है, युद्ध नहीं लड़ने से। तो जब तक तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति होगी तुम सन्यासी नहीं कहलाए जाओगे। तो तुम इस आसक्ति को त्यागो, जैसे भगवान सुदामा को ऐश्वर्य दिया क्योंकि सुदामा आसक्त थे अपनी दरिद्रता से। तो हालांकि कोई बोल सकता है कि कितने बड़े विरक्त सुदामा, लेकिन असली विरक्ति सुदामा की कब देखी गई, जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने ऐश्वर्य दिया और वो जो उनके अंदर दरिद्रता में रहने की आसक्ति थी उसे दूर किया। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, व्हाट इज रियल रेनन्सिएशन, व्हाट इज रियल नैष्कर्म्य, टू गिव अप द एटीट्यूड ऑफ एंजॉइंग, टू गिव अप दिस अटैचमेंट टूवर्ड्स एंजॉयमेंट, दैट डिजायर टू एंजॉय, उसको त्याग करो। और क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहां पर युद्ध में लड़ूंगा तो मैं कर्म बंधन में फंसूंगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो उसके वजह से सबसे ज्यादा वायलेंस तुम क्रिएट करोगे। जैसे कि पुलिस अगर वायलेंट नहीं बनती है तो फिर उसके वजह से वायलेंस ज्यादा बढ़ता है। जैसे मुंबई में हुआ था एक समय, सबसे ज्यादा वायलेंस कब बढ़ा था, जब पुलिस स्ट्राइक पे थी। तो पुलिस यदि स्ट्राइक पे चली जाए तो फिर क्या, वायलेंस सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो ये कहना कि पुलिस वायलेंट है, हमको वायलेंस मिटाना है तो पुलिस को मिटा दो, तो हम नैष्कर्म्य को उस गलत तरीके से समझ रहे हैं। तो वही भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि ये दो मुद्दे, अर्जुन यदि तुम सोच रहे हो कि न कर्मणाम अनारंभाम और संन्यासम न सिद्धि, ये दोनों प्राप्त नहीं होगा तुम्हें, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे और संन्यास लेकर भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, इसलिए तुम हे अर्जुन कर्म संन्यासी बनो और इसी प्रकार तुम सही प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर पाओगे। और अगला श्लोक अब भगवान अर्जुन को यह बताने वाले हैं कि तुम तो छोड़ दो, सभी प्राणी इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि बिना कर्म किए रह सकता है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म करे, कि हर एक क्षण किसी न किसी कर्म में तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगा ही है। तो तुम कर्म से भाग तो सकते ही नहीं, ये जो तुम्हारी भ्रांत धारणा है कि मैं कर्म को आरंभ ही नहीं करूंगा, वो भी एक कर्म है, कर्म को आरंभ न करना भी एक कर्म है। तो तुम कर्म से भाग सकते ही नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए अर्जुन तुम मेरे मानने पर ये युद्ध प्रारंभ करो और अपना श्रेय इसमें प्राप्त करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय।